ओम शांति। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय बाबा के अनमोल रतन मोहन भाई जी पधारे। मम्मा बाबा के हाथों से पले हुए उन शिक्षाओं को डायरेक्ट आप और हम तो कैसे ले रहे हैं, हमें पालना देने वाले हमारे बड़े भाई बहन हैं, इनको पालना देने वाले डायरेक्ट साकार मम्मा बाबा, उन हाथों से पले हुए शिक्षाएं लेकर के अपने में समाते हुए आगे जो बढ़े हैं, बहुत से गहरे अनुभव, बहुत सी यादें अपने अंदर में समाये हुए। आप 61 से ज्ञान में हैं, आपने ONGC में सुपरिंटेंडेंट जियोफिजिस्ट के रूप में कार्य किया है और उसके बाद आपने कई स्थानों पर जाकर के अपनी सेवाएं जैसे ONGC में या IFCO, CRIPCO, कई कंपनीज में जाकर भी बाबा के संदेश दिए हैं। आजकल जो चलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट कोर्सेज जो चलते हैं, उन कोर्सेज को भी अनेक कंपनीज में जाकर के दिया है। बहुत से सेमिनार्स, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में आपने भाग लिया है, आपने प्रदर्शनियां, 5 किताबें भी लिखी हैं। यूं तो मैं सुनाऊं, आपने बहुत कार्य किया। 85 में जो हमारी पदयात्राएं निकली थी 12 स्थानों पर, आपने जगह जगह जाकर उसमें भी बाबा का संदेश, क्योंकि उस समय तो आप यूथ विंग में थे, तो उसमें भी आपने जगह जगह संदेश जाकर के दिया है। और आज भी हमारा ज्ञान सरोवर, उसमें आप उस एकेडमी के डायरेक्टर कहूं संभालते हैं आप उसको, और साथ साथ हमारा जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज आप हमें दिशा देंगे मनजीत जगतजीत कैसे बने। आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। एक बार हमारे साथ मिलकर के सब एक नई रीति से ओम शांति बोलेंगे, जैसा यज्ञ में पहले भी कई बार बोला गया। ओम शांति। बाबा की आज की मुरली तो सबने सुनी, कैसी लगी? हम सबके लिए ही थी, और मुरली तो सभी अच्छी होती हैं, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने एक लक्ष्य दिया हम बच्चों को। कौन सा लक्ष्य दिया है? विस्तार को सार में समाओ। अच्छा, और मुरली का सार है? हाँ, विस्तार को। आज की पूरी मुरली अगर देखें तो आज के विषय के ऊपर ही थी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और उसका मतलब ही है मन जीते। क्योंकि भक्ति मार्ग में अक्सर कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, चाहते हुए भी हम एक जगह नहीं टिका पाते आदि आदि। और यहाँ पर तो बाबा ने बड़ा सहज कर दिया है मन को जीतना, और मन जीतने के साथ साथ और क्या हो जाता है? जगत जीत। और साथ साथ क्या होता है? माया जीत और प्रकृति जीत भी। क्योंकि जगत के अंदर तो ये प्रकृति के 5 तत्व भी आ गए, दुनिया के अंदर जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सारी चीजें इस संसार का ही एक भाग रूप है। तो हमारा ध्येय क्या रहे, उसमें बाबा ने एक पॉइंट बताई थी, विस्तार को सार में समाये ये सब ठीक है, लेकिन एक लाइन में बाबा ने कहा था, देखते हुए बिना देखो, सुनते हुए ना सुनो, लेकिन एक लाइन में उसकी विधि क्या बताई थी बाबा ने, हाँ, लक्ष्य को जानने के लिए ये करना है, बाबा ने एक बस कुछ तीन चार शब्दों में ही बोल दिया, वो था सदा दाता बनो, दाता के बच्चे सदैव देने का लक्ष्य रखो, और जितना देते चलेंगे ना उतना एक नियम है बढ़ता जाएगा। दाता कौन है, सबसे बड़ा दाता कौन है, शिव बाबा, और इस दुनिया में वो तो दिखता नहीं ऊपर से, जिससे हमें और सब चीज मिलती है, ब्रह्मा बाबा। अच्छा, और सबसे बड़ी दाता है पृथ्वी, धरती माता जिसे बोलते हैं वो दाता है। देखो, एक बीज बो दो बस पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे और वो मल्टीप्लाई में मिलियन फोल्ड मल्टीप्लाई करके दे देती है। धरती सब चीजों की दाता है, वहां से ही पानी मिलता है, अन्न गेहूं चना सब चीज पैदावार वहीं से होती है, और इन सब के साथ साथ जो भी है फल फूल और मिनरल मेटल हर चीज जो है धरती से मिलती है, तो धरती है सबसे बड़ी दाता। तो इसीलिए धरती के समान हमें बनना है, दाता तभी बनेंगे। लेकिन दाता की भी अगर हम स्थूल दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई लिमिट हो सकती है, किसी को अन्न देना कपड़ा देना उसकी लिमिट होगी, जैसी जिसकी आर्थिक सामर्थ्य होगी या कुछ। लेकिन बाबा ने क्या देने को बोला है, ज्ञान, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह, दुआएं, सबके प्रति आदर भाव, सत्कार भाव, इन सब चीजों में कुछ खर्च नहीं होता। लेकिन दाता बनने का जो बाबा ने आज लक्ष्य दिया है, बस नए पहरा में एक ही लाइन ये है कि सदा लक्ष्य रहे मुझे दाता बनना है, दाता के बच्चे बन करके सबको देते चलना है। और जिस दिन जो बात बाबा बोलता है उस दिन उसका विशेष महत्व होता है, ताजी बात होती है ना, उसका प्रयोग अगर करते रहेंगे तो अपने आप हम देंगे इतना, हम भरपूर इतने से हो जाएंगे, देना ही लेना है जैसा कहते हैं। तो इस रीति से ये धरती की तरह हम दाता बन करके देते चले। हमारी भारतीय संस्कृति भी कई चीजों में मन के लिए उसने बहुत कुछ बोला है। हा? क्या बोला है मन के लिए, बहुत बड़ी बात है, मन जीते जगत जीत तो कहा ही है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी क्या बोल दिया है मन के लिए, मन मना भाव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो इसके अंदर सब चीज का सार आ जाता है। विस्तार बहुत बड़ा है, संकल्पों की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन सार यही है बिंदी, जैसा बाबा ने कहा। और आज क्या उदाहरण दिया बाबा ने, विस्तार में सार को देखो और सार में चले जाओ। स्थूल उदाहरण क्या दिया बाबा ने, हाँ, मछली का किसका उदाहरण है, अर्जुन का। देखो लक्ष्य वो ऊपर है, देखना नीचे है गर्दन, तीर ऊपर मारना है। वो भी मछली घूम रही है, घूमती हुई मछली में भी आंख पूरी मछली नहीं, आंख आंख में पूरी नहीं, बिंदी उसकी। कितना बड़ा लक्ष्य, यही मन जीते जगत जीत का है। मन को जो है बिंदी, जहां पर हमारा ध्यान हो, कंसंट्रेशन चाहते हैं करना, उस समय वहां पर हो जाए। कुछ दिन पहले दादी गुलजार जी क्लास करा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सब ब्राह्मण बन गए हैं, अभी हमारे विकारी संकल्प तो चलेंगे नहीं, चलते भी नहीं है मेजोरिटी के, लेकिन अगर वर्तमान समय व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं वो भी जैसे एक विकारी संकल्प है। क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात जहां हम नहीं चाहते हमारे विचार वहां जा रहे हैं, भले संबंधों में जा रहे हों, भले कहीं कटुता किसी के प्रति द्वेष भाव ईर्ष्या भाव ये सब है, उधर अगर जा रहे हैं तो ये भी जैसे एक विकारी, जैसे हम जानते हैं कोई विकार का संकल्प आया, विकार के वशीभूत वाणी निकली, क्रोध आ गया, अहंकार आ गया, रियलाइज होता है। इसी तरह व्यर्थ संकल्पों का भी ये रियलाइज होना चाहिए। बाबा भी चाहता है कि व्यर्थ संकल्पों से भी हमें मुक्ति मिले। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? संकल्पों को जीतने के लिए तीन बातें विशेष हैं। संकल्प जो है मन के अंदर होते हैं ना, तो पहला अपने को ये देखना है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की संख्या कितनी है। जितनी विचारों की संख्या ज्यादा होगी उतना विचार कमजोर होंगे, और जितना विचारों की संख्या कम होगी उतने वो शक्तिशाली होंगे। लौकिक परिवार में भी मानो दो परिवार हैं, एक परिवार में 6-8 बच्चे हैं, माता पिता हैं, दोनों की आमदनी सेम है, दूसरे परिवार में एक या दो ही बच्चा है, तो किसकी बच्चे की पालना अच्छी होगी? जिसके कम होंगे, शक्तिशाली पालना और अच्छी। इसी तरह संकल्प भी जो है ना, ये है कि जितने, एक तो हम अपने संकल्पों से चेक कर सकते हैं कि मेरे संकल्प शक्तिशाली हैं, मैं धीरे धीरे मन जीते बनता जा रहा हूं या नहीं। अगर संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं, किसी ने कोई बात करी, अपमान हो गया, बस संकल्पों की लहर लग गई एकदम, तो उसको वहीं पर स्टॉप करके क्वांटिटी ऑफ थॉट्स को कम से कम कर देना, ये है संकल्पों के ऊपर एक वश करना, मन जीते जगत जीत की तरफ पहला कदम और आगे बढ़ाना। तो क्वांटिटी ऑफ थॉट, विचारों की संख्या, एक तो वो हम कम करते चले। होता क्या है, कभी भी कोई कमजोर संकल्प आता है ना, तो आपने देखा होगा कि कभी कोई मानो विकारी संकल्प कोई आया, तो पहले दूर से आएगा कोई किसी का नाम रूप का या कोई भी बात, तो शुरू में हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मन में भी जैसे गुदगुदी सी होती है, मन के अंदर वो संकल्पों को हम आने का रास्ता खोल देते, तो एक संकल्प आया, दो आया, चार आया, बढ़ता जाएगा, और जब हम बहुत परेशान होने लगेंगे तब हमें जागृति आएगी, अरे बाबा ने तो कहा है ये नहीं, तब हम द्वार बंद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक दुश्मन काफी अंदर आ चुका होगा। इस कारण से बाबा ने क्या कहा, एक शब्द दिया है, क्या अगर माया के संकल्प आते हैं, माया आती है, तो क्या करो, दूर से ही भगा दो। पहला संकल्प ही अगर कुछ आया उसे समझ करके वहीं से दूर से भगा देंगे तो फिर वो नहीं आएंगे, तो दूर से ही भगा दो, नहीं तो संकल्पों की श्रृंखला लग जाएगी। तो एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, विचारों की संख्या, दूसरा है विचारों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, दूसरा क्वालिटी ऑफ थॉट्स। और जितना विचारों की संख्या ज्यादा होगी उतना गुणवत्ता कम होगी, और जितना विचारों की संख्या कम होगी उतना गुणवत्ता या क्वालिटी विचारों की ज्यादा होगी। योग में हम यही तो करते हैं, कमेंट्री होती है, लाल लाइट जलती है कि विचारों को हम बस कम करते हैं और धीरे धीरे जैसा बहन जी कमेंट्री आ रही है उसके अनुरूप कि मैं शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, बिल्कुल कम विचार और धीरे धीरे विचार है। ये है क्वालिटी ऑफ थॉट्स का प्रतीक, और क्वांटिटी ऑफ थॉट का प्रतीक है वो विचार एक के बाद एक बहुत ज्यादा आते जाएंगे कंटिन्यूअस। यहाँ पर जैसे अभी आप बैठे हो बहुत अच्छे वातावरण में, शांति के, सब बहुत अच्छा है, सडनली आपके पास मोबाइल आ जाए, न्यूज आए कि आपका फलाना संबंधी जो आपको बहुत प्रिय है, परिवार का ही सदस्य है जैसे, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और वो सीरियस हालत में फलाने हॉस्पिटल में है, बस विचारों की श्रृंखला एकदम बढ़ जाएगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस हॉस्पिटल में है, क्या होगा छोटे बच्चों का, आदि आदि बहुत सारे विचारों की श्रृंखला। और जब क्वांटिटी ऑफ थॉट बहुत बढ़ जाएगी तो फिर क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, होगी नहीं क्वालिटी। तो इसलिए कभी विचार ज्यादा आ रहे हों, आप परेशान हो, तो उसको रोकने का उपाय ये है कि अपने क्वालिटी ऑफ थॉट्स को बढ़ा दो, कोई टेप लगा दो, कोई कैसेट, कोई ऐसे शिविर की कमेंट्री की कैसेट है कोई भी, उसको लगा देंगे तो हमारी बस सुनेंगे थोड़ा सा, अपना विचारों की क्वांटिटी कम होती जाएगी, विचारों की संख्या कम होती जाएगी। तो जितना विचारों की संख्या कम होगी उतनी हमारी एनर्जी वेस्ट होना कम हो जाएगी, और एनर्जी वेस्ट होना कम होगी तो नेचुरली आत्मा और शक्तिशाली होती जाएगी। तो ये है क्वालिटी ऑफ थॉट्स और क्वांटिटी ऑफ थॉट, ये सीसॉ का खेल है। क्वांटिटी ऑफ थॉट ज्यादा हुई तो क्वालिटी ऑफ थॉट कम, क्वालिटी ऑफ थॉट ज्यादा हुई क्वांटिटी ऑफ थॉट, विचारों की संख्या और विचारों की गुणवत्ता। और तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा, ये एक बहुत बड़ी चीज है मन को जीतने के लिए, क्योंकि मन अर्थात विचारों का उद्गम स्थान है ना, तो इसीलिए ये है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। अक्सर करके विचार बहुत आते हैं, इधर विचार चल रहा है, इधर चल रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में, अभी आप यहाँ बैठे हो सकता है घर की तरफ विचार चले जाएं, हो सकता है बिजनेस की तरफ, हो सकता है माताओं के परिवार की तरफ, बच्चों की तरफ, बैठे एक जगह हैं लेकिन सब तरफ विचार अगर जा रहे हैं तो उन विचारों में शक्ति नहीं रहती। और अगर किसी तरह हम विचार को एक ही दिशा में कर सके, बचपन में वो कहानी पड़ी होगी ना, एक के चार बच्चे थे, अलग अलग उसको लकड़ी दी पतली पतली और एक ने तोड़ दी, फिर बांध दी, कोई नहीं तोड़ सका, जैसे रस्सी का भी उदाहरण देते हैं। तो ऐसी अगर एक ही डायरेक्शन में हमारे विचार चलेंगे तो क्या होगा, वो विचारों में शक्ति और होती जाएगी, मन जीते हम धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो इन तीन चीजों से एक तो हम चेक कर सकते हैं हमारे विचार मन जीते जगत जीत और प्रकृति जीत और माया जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इन सबका उदाहरण साकार ब्रह्मा बाबा थे। हमने देखा बाबा से पहली बार हम मिले कानपुर में, लखनऊ में ज्ञान में आए 61 में 62-63 में बाबा वहां आए और बाबा से मिले वहां पर। तो उसके बाद मधुबन में भी कई बार बाबा से मिले आते थे। तो हमने देखा पहले तो बाबा काफी समय देख करके हमारी बातें सुना करते थे। हाँ बच्चे जीवन कहानी लिख के दो तीन दिन पहले भी आया ना, कुछ दिन पहले, विकर्मों को भस्म करने के दो तरीके हैं, याद है? हाँ क्या क्या आया था? हाँ, इस जन्म के जो पाप हैं वो अगर बाप को सुना देंगे वो आधा माफ हो जाएगा, उससे आधा इसी जन्म का, लेकिन जो पिछले जन्म के हैं वो तो योग बल से करने पड़ेंगे, और ज्यादा तो इसी जन्म के ही पाप या कोई भी बातें, क्योंकि वो स्मृति में है, पिछले जन्म में क्या क्या किया है वो तो कुछ याद ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, इसलिए वो उतना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते पिछले जन्म के पाप, जो इस जन्म के संबंध कोई पाप कोई बातें हों वो अगर करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते थे लिख करके दे दो। बस बाबा लिख करके, हमें याद है हम लोगों ने ना लिख करके अपना करीब 20 पेज हुए, जनरल 16-17 साल के थे, कोई भी ऐसा पाप नहीं था, बच्चे ये मिठाई चोरी करके खा ली या ये कर लिया वो कर लिया बस। तो बाबा ने देखा, और देखो जितना मन जीते जगत जीत होते जाएंगे, बाबा में एक क्वालिटी देखी, चाहे अकाउंट हो चाहे जीवन कहानी हो कुछ भी हो, लंबी चौड़ी है, बाबा तो बस यूं करते गए, वही निगाह ठहरती थी जहां कोई करेक्शन देनी होती थी। पूरा इतना पढ़ने का किसको मार्जिन। ये भी मन जीते जगत जीत का लक्षण है कि ऑटोमेटिकली वहीं उसी जगह जाएगी नजर जहां पर कि कोई करेक्शन हो। तो ये बाबा का देखा। तो बाबा कहा करते थे कि बच्चे लिख करके, अभी आप क्या करेंगे, अभी बाबा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अपना कुछ भी अगर जो चीज मन में परेशान करती है लिखो, अपना नाम भी नहीं लिखो चाहे, क्योंकि नाम लिखने से कई बार होगा कि हमारा सोशल स्टेटस भी डाउन हो जाएगा या लोग क्या समझेंगे, वो भी नहीं लिखो, वो बस बाबा का भंडार वो है, एक पत्रों का एक दूसरा, तो बस डाल दो, जगह भी नहीं लिखो नाम भी नहीं लिखो, फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपने सच्चे दिल से बाबा को लिख करके दे दिया इस जन्म का आधा माफ, कितना हल्का हो गया कर्ज, ये तो कर्ज है ना, कर्ज अगर आधा माफ हो जाए तो कितना बड़ी बात है। तो एक ये तो बाबा शुरू में तो विस्तार से, हाँ बच्चे लिख के दो। फिर बाबा को जब हम 66 में लगभग मिला करते थे, 65-66-67, तो बाबा को कोई बात बोलते थे, पूछते थे सेवा का या पुरुषार्थ की या कोई भी बात, 2-3 लाइन 4 लाइन सुन के बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया और ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब अंत में 17-18 जनवरी को, हमें एक ये भी सौभाग्य मिला है कि 17-18 जनवरी को हम यहाँ पर थे, और यहाँ पर बाबा का जो मन जीते जगत जीत का स्वरूप देखा, कैसा स्वरूप देखा, कि बाबा से 6-7 बार मिलना हुआ उन 2 दिनों में, लेकिन बाबा के पास हर बार जाते थे, बाबा से ये बात करेंगे, सेवा की ये बात है, सेंटर की ये है, पुरुषार्थ की ये है, बस बाबा के पास गए, बाबा ने यूं थोड़ा सा दृष्टि दी, बाबा कहते अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। यानी शुरू में पूरा बताने की बात होती थी, बीच में 4-6 सेंटेंस में, और अंत में तो इतना मन जीते जगत जीत बाबा की, दूसरे के मन के भाव को पूरा का पूरा पढ़ के, एक अक्षर भी बोलने की जरूरत, बच्चे ये पूछने आए हो, पहले प्रश्न बता देते थे बाबा और उसके बाद ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। तो एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार जब ऐसा हुआ, तो बाद में हमने बड़ी दीदी से पूछा एक बार कि दीदी ये कैसे होता है, तब दीदी ने बताया था देखो जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या होता है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो दूसरे की इच्छा को तुरंत पढ़ सकता है और उस इच्छा को पूर्ण कर सकता है, जो भक्ति मार्ग में तथास्तु का गायन है इष्ट देवों का, भक्त को इच्छा करता था इष्ट देव के सामने गा इष्ट देव यही तथास्तु, और बस भक्त की इच्छा पूरी हो जाती थी। ये वास्तव में मन जीतने का, कि दूसरे के मन को हम पढ़ के उसकी इच्छा को पूर्ण कर सके। जैसे पानी होता है, प्लेन पानी है, साफ है, निर्मल है, अपनी छवि देख सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा कंकड़ भी फेंक दो, लहरें पैदा हो जाएंगी, अपनी छवि भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरह अगर हमारे अपने मन में कोई संकल्पों की लहरें अगर होंगी ना, हम दूसरे के मन को पढ़ नहीं सकते, उसमें मिक्सचर हो जाएगा हमारा। और इसीलिए अभी ये बाबा इसलिए कहते हैं कि अंत समय में बहुत भक्त आत्माएं, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी, भिन्न भिन्न इच्छाएं लेकर के, कुछ मार्जिन नहीं होगा, वो कहेंगे कि भाई हमें ये चाहिए ये नहीं, उनके आने से ही, उनके नैनों से ही हम उनकी इच्छा को पढ़ करके उनकी इच्छा पूर्ति कर सकेंगे, तभी तो वो ये भाव लेके जाएंगे, हाँ ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारे भगवान है, प्रभु है। हे प्रभु, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये उस जगह सब हजारों भाई बहनों का जब ये ऐसी अवस्था होगी तो द्वापर युग से यही सिद्धांत निकल जाएगा, भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन उसे हमारे इष्ट देवों से आज के दिन भी मूर्तियों के द्वारा इतनी शांति और शक्ति का एहसास होता है, तो हम तो चैतन्य इष्ट देव यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए हमारे एक एक कर्म से, व्यवहार से, वाइब्रेशन से उनको ये अनुभव होना चाहिए, इनके सम्मुख जाते ही मेरा मन शांत हो गया, शीतल हो गया, मेरे मन में जो इतनी लहरें पैदा हो रही थी वो सब शांत हो गई। तो ये तीसरी बात, एक एक बात को देखते जाना किस प्रकार से बाबा का ये है कि हर एक चीज का अगर हमें लक्षण और विधि मालूम होगी तब हम उस पर कार्य कर सकेंगे। इसीलिए इसमें एक ये देखते चलना है कि किस प्रकार से मन के ऊपर हमारा नियंत्रण धीरे धीरे होता चला जा रहा है। उसके लिए बाबा ने बताया ना, आज भी बताया ना, तृप्ति का अनुभव, जैसे हर एक को बस मैं तृप्त आत्मा हूँ, सब कुछ है, यही है कि इच्छा ना हो, वही बात है तृप्ति की, कि सब संतुष्टता जो बाबा कहते हैं, जो है जैसा है उसमें हम संतुष्ट रहें और आगे पुरुषार्थ में बढ़ते चले। एक ये बात बताई बाबा के, और क्या मन जीते जगत जीत का है साथ में, कि बाबा का एक बात हमने देखी, क्योंकि ये चीज अंत में बहुत काम आनी है। यहाँ पर जब कोई भी पार्टियां मिलती थी बाबा से और बाबा के पास आती थी, टाइम दिया होता था, पार्टी टीचर इंचार्ज जाती थी बाबा के सम्मुख, देखती थी बस बाबा बैठे हैं, आंख भी खुली हुई है लेकिन जैसे कहीं खोए हुए हैं, अपनी धुन में मस्त है, शरीर यहाँ है लेकिन विचारों से बाबा कहीं और है। टीचर सामने भी खड़ी हो जाती थी, बस बाबा को ख्याल नहीं, जैसे आज भी आप देखते हुए भी न देखो, बोलते सुनते हुए भी न, वो स्थिति प्रत्यक्ष बाबा की थी, सामने आंख खुली हुई है, ऐसा नहीं कोई ध्यान में है वो भी नहीं, लेकिन उस मन की उस अवस्था में इतने मशगूल होते थे। फिर टीचर जब बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को ऐसा जर्क सा भी लगता था, कई बार एकदम बाबा उस अवस्था से नीचे आके कि हाँ हाँ बच्ची, बाबा मैं फलानी पार्टी लाई हूँ, आदि आदि ले आती थी पार्टी, हाँ बच्ची लाओ, सब बैठते थे बाबा से मिलते थे। और इसका एक ये भी वो है लक्षण कि जैसी हमारी मानसिक स्थिति होगी वैसे ही हम भले टेम्परेरी ही दूसरे की कर सकेंगे, हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकेंगे। दूसरे तो दुनिया वाले तो हमारी तुलना में रिलेटिवली नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, वो कम वो है मतलब पॉजिटिव, तो उस तुलना में हम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकेंगे, वो महसूस करेगा। जैसे बाबा के सम्मुख जाते थे ना, बस बाबा अक्सर करके आओ बच्चे, बाहर चित्र जो लग रहा है ना बाहें का वो बिल्कुल प्रैक्टिकल था, आओ बच्चे आओ, तो बस एकदम जैसे मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण, बस एक जाता था बस, और बाबा दृष्टि दी, बाबा की बाहों में समाया और हम सब एकदम विदेही हो जाते थे थोड़े समय के लिए, बिल्कुल देखा, क्योंकि बाबा की विदेही अवस्था थी इसलिए बाबा दूसरे को भी विदेही कुछ सेकंडों के लिए, कुछ उनके लिए समय के लिए कर देता था। फिर बाबा ऐसे थपथपा, आओ बच्चे आओ आओ, तो ऐसे करता था, तो फिर हम भी जैसे देह में खींच करके, कोई आत्मा कोई जाती नहीं लेकिन इतने विदेही हो जाते थे, उसके बाद खिंच के आई, फिर बाबा नाम पूछा, टोली ओली खिलाई, परिचय, एक जाता था फिर दूसरा आता था, हर एक को ये अनुभव होता था कि मैं जैसे विदेही हूँ। जैसे कोई भी है ना, मानो कोई भी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, इसे ऊपर फेंका, थोड़ी दूर तक ये ऊपर गया, जितनी एनर्जी इसमें दी, उसके बाद फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो गया, वो नीचे आने लगा, ऐसे ही बाबा की एनर्जी उस थोड़े समय के लिए हमें विदेही कर देती थी और फिर जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आते थे फिर से देहभान में आकर के यहाँ की ही बातों को महसूस करने लगते थे। लेकिन अनुभव हर एक को होता था क्योंकि बाबा की वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव और पावरफुल थी। तो ये अब इसीलिए बाबा कहता है अभी लोग सुनना कम चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। धीरे धीरे हमारी अपनी स्थिति को हम ऐसे बढ़ाते जाए कि लोगों को ये अनुभूति कराते जाए। तो बाबा के पास आते थे, मिलते थे और ये स्थिति क्या थी बाबा की, जब चाहे देह में आना, जब चाहे देह से न्यारा हो जाना। ये भी मन की संकल्प शक्ति के आधार पर है, इच्छा शक्ति के आधार पर। यही मन जीते जगत जीत का एक और चौथा पांचवा लक्षण कि जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं और जब चाहे हम देह के अंदर आ जाएं, आके कार्य व्यवहार करें। ये एक और विशेष लक्षण। और साथ में क्या, क्योंकि जब अंतिम दो दिनों में ये देखा हमने कि बस बाबा के सम्मुख गए, जो भी अलग अलग कभी धारणा के लिए, कभी सेवा के लिए, कभी अपने प्रोफेशनल कार्य के लिए, कुछ भी बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, ये चरम सीमा है मन जीते जगत जीत का, मन जीतने का कि किसी के भी भाव को नैनों के द्वारा, उसके वाइब्रेशन के द्वारा जान लेना और केवल जान ही नहीं लेना, उसका समाधान भी दे देना। ये प्रैक्टिकल दो दिन में कई बार, छह सात बार बाबा अनुभव किया। और इसका फिजिकल और रूप क्या अनुभव किया, 18 जनवरी को क्लास हो रही थी हिस्ट्री हॉल में, हम भी सम्मुख बैठे हुए थे और बाबा क्लास चला रहे थे। और आज जैसे बाबा ने कहा ना, हरेक को फरिश्ते स्वरूप का वो अनुभव हो, देह में रहते भी देह से न्यारे का। उस दिन 18 जनवरी के रात्रि के समय हमने यही अनुभव किया। बाबा जैसे ही क्लास में आए ना, दो दिन बाबा के साथ साथ रहे, दिन में मिले जुले उस समय उसका नहीं, कि जैसे बाबा देह से न्यारे, बिल्कुल सफेद फरिश्ता जैसे। और बाबा ने वो एक टोपी सी लंबी सी होती है ना, हम दिल्ली होके आसाम से आए थे, ये भी एक इतिहास है। जब हम आसाम गए थे तो बाबा ने ही भेजा था, हमारी पहली पोस्टिंग इंजीनियरिंग पास करने के बाद हमारी पोस्टिंग जब आसाम में हुई तो हमारी इच्छा नहीं थी जाने की, बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ। हमने कहा बाबा 3000 मील तक कोई सेंटर ही नहीं है, पास में पास सेंटर कलकत्ता है, वो भी इतना 3000 किलोमीटर है, हम वहाँ क्या करेंगे। इसीलिए तो बाबा भेज रहा है तुम्हें कि जाओ, वहाँ मेरे चात्रिक बच्चे हैं और जाके बस उन बच्चों को सुजाग करना है, और जब समय होगा बाबा बुला लेगा। ये बाबा ने बोला, हमने इतना गौर नहीं किया, चले गए। और वाकई बाबा का हर हफ्ते पत्र आता था, अभी तक भी हमारे पास 8-10 पत्र है, और बाबा कैसे हर एक में बल भरता था। और वहां पर बस चूंकि बाबा का वो था, सेवा वगैरह हुई। जनवरी 1969 आया, डेढ़ साल बाद, तो जनवरी के उस समय ना बस ऐसा ही आभास हुआ, संदेश बाबा से मिला कि बच्चे आओ और प्लेन से आओ। तो बस आसाम से हम प्लेन से आए दिल्ली और फिर यहाँ आ गए और 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। देखो बाबा अपने, कभी भी बाबा कोई शब्द बोलता है, हरेक में बड़ा गुह्य रहस्य होता है, बाबा समय पर बुला लेगा। विदेश में कोई सेंटर नहीं था उस समय, दूर में दूर वो ही सेंटर था आसाम में शिव सागर, जहां पर हम पोस्टेड थे। लेकिन बाबा ने बुला लिया और 17-18 जनवरी को हम यहाँ बाबा के पास थे। तो बाबा का कर्मातीत स्थिति, मन जीते जगत जीते, ये स्थिति देखने को मिली। तो उस क्लास में हम अंतिम दिन बैठे हुए थे, बाबा क्लास मुरली चला रहे थे, और जब हम आ रहे थे तो दिल्ली से ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी की मदर होती थी, वो दिल्ली की हेड होती थी, तो उन्होंने कहा था, एक पैकेट बना के दिया सब बाबा के लिए, ऐसे एक लंबी सी टोपी थी, शॉल थी, सफेद दस्ताने वगैरह, वो ही बाबा पहन करके बिल्कुल बाल कृष्ण का स्वरूप बाबा का उस दिन लग रहा था। तो ऐसा बस देखते, एक तो स्थूल रूप भी ऐसा और दूसरा अंदर की कर्मातीत स्थिति, इतनी महानतम स्थिति जो जीवन में किसी की भी हो सकती है, तो लगता था जैसे बाबा जमीन से जैसे ऊपर ही है, कुछ इंच ऊपर ही चल रहा, हल्का सा तैरता हुआ, जैसे कि बाबा आया क्लास में बैठा और बस बाबा ने मुरली चलाई। वैसे बाबा को ना खांसी कई बार आती थी उन दिनों, सुबह बाबा ने मुरली इसीलिए नहीं चलाई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमने देखा उस दिन 18 जनवरी की मुरली में, आप देखो मुरली सुनो, एक बार भी बाबा को न खांसी आई न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रमाण है कि कर्मातीत अवस्था के समय हमारे कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, और हम जब योग बल के द्वारा कर्म भोगों से बिल्कुल मुक्ति पा लेंगे तो बस आराम से शरीर छोड़ के चले जाएंगे। और ये बाबा का उस दिन देख, एक बार भी न खांसी आई न कफ आया न कुछ भी, और बस बाबा सबको बोलते रहे, देखते सुनते सुनते ही हमारे मन में एकदम ख्याल आया, ये मैं पर्सनल बात बताता हूँ, कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए व्यक्तिगत कुछ और। बस जैसे ही ख्याल आया, और वो तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त आत्मा थी, बिल्कुल निर्मल, किसी के मन में भी कोई ख्याल है तुरंत वहां, तो बाबा ने तुरंत ही उसे कैच किया होगा, तुरंत ही हमारा नाम लेके हमारे बारे में बस कुछ महावाक्य उच्चार दिए, जो आज तक भी उस सीडी में, उस कैसेट में टेप्ड है, और हमारे लिए और भी आगे के लिए मार्ग प्रदर्शना बन गए। तो ये ही अब हम बच्चों को भी करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा से हम बच्चों ने महसूस किया, दादियों से महसूस कर रहे हैं, महान आत्माओं से, ऐसी हम लोगों के द्वारा विश्व की अनेक अनेक आत्माएं हमसे अपने इष्ट देव का अनुभव करेंगी। हम चाहे अपने को साधारण समझे, लेकिन वास्तव में हम साधारण नहीं है, हम बहुत महान आत्माएं हैं, जो बाबा ने कहा है बहुतों के इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। तो जितनी अपनी महानतम स्थिति में रहेंगे, उतना दूसरों को भी महानता का अनुभव होगा। तो बाबा ने वो महावाक्य उच्चार दिए और जैसे बिल्कुल तृप्त कर दिया। फिर बाबा उठे और बस उठ के बाबा ने याद प्यार वगैरह दी और फिर एक कदम चले, फिर रुक गए, फिर बाबा घूमे, फिर बच्चों को एक एक को दृष्टि देने लगे, बिल्कुल तृप्त, ऐसे दृष्टि बार बार बाबा की दृष्टि दादी प्रकाशमणि जी की तरफ आके रुक जाती थी, जो दादी जी सामने बैठे हुए थे, फिर दृष्टि देके फिर बाबा चलने को हुए, हिस्ट्री हॉल छोटा है, फिर एक कदम चले, फिर रुक गए, फिर वो देने लगे एक एक। बस यही हो कि शिव बाबा को हो, आज मैं इस साकार तन के द्वारा, ये तो अंतिम मिलन है, शिव बाबा को पूरा, शिव बाबा को तो मालूम ही है, और ब्रह्मा भी चूंकि शिव बाबा समान बन चुका था कर्मातीत स्थिति, इसलिए हम तो ये समझते हैं ब्रह्मा बाबा को भी पूरा आभास था कि बस ये मेरा बच्चों से अंतिम मिलन है। तो जैसे यहां से दरवाजे तक जाते जाते चार पांच बार बाबा रुके, बच्चों को दृष्टि देते रहे, और बस मुस्कुराता हुआ चेहरा, और दरवाजे पर जाके बाबा ने कहा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। तो देखो छुट्टी और विदाई, इसका मतलब अपना आभास था, इस साकार तन के द्वारा ये अंतिम मिलन है, तभी तो बाबा ने वो करा। इसलिए हमें भी अंतिम समय तक इतनी ऐसी स्टेज बनानी है, अंतिम समय आभास हो जाए, बस अब मेरा जाने का समय, ये तन रूपी वस्त्र बदलने का समय आ गया, तो खुशी खुशी हम अपना ये चोला छोड़ेंगे। तभी तो जो गायन है ना, अंतमते सोगते, अंत में कोई और किसी भी प्रकार की कोई स्मृति ना हो, तन मन धन व्यक्ति जन कोई भी संबंध, लेकिन तभी हमारी वही कर्मातीत अवस्था, और ये सबका आधार ही है मन, क्योंकि हम कहीं भी मन से ही पहुंचते, अरे मेरा पैसा वहां है, बच्चे का क्या होगा, मन के आधार पर ही तो, और मन को अगर जीत लिया यो स्थिति अपने आप आ जाएगी, मन जीते जगत जीत गए। फिर बाबा गए और हम लोगों ने जैसे सुना है दादी जी के हाथ में हाथ, करते बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन देह त्याग तो किया, लेकिन देह त्याग के साथ उसके बाद और क्या एक हमने विचित्र स्थिति देखी, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन ये मन जीते जगत जीत के अंदर और हमें क्या करना है, क्योंकि अंत में जगत जीत के साथ जैसा बताया प्रकृति जीत, तो और आज बाबा ने जो बताया धरती का गुण बताया ना दातापन का, तो मन जीते का यही लक्षण होगा कि कोई भी कैलेमिटी आई, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बाबा ने उसका एक स्थूल तो महावाक्य दिया है, कभी भी कोई समस्या आए तो क्या सोचो क्या करो, बहुत अच्छा महावाक्य बोला हुआ है बाबा ने, उसको तो यूज करना चाहिए है? देखो उसको यूज नहीं करेंगे तो समस्या से पार कैसे होंगे। मेरा साथी, अरे बाबा सर्वशक्तिवान बाबा आओ मुझे इससे निकालो, मीठे बाबा बाबा, बस उसमें उसको इतनी बार हम अंदर से वो करें, आप देखोगे कि वो समस्या का समाधान किसी व्यक्ति के द्वारा किसी साधन के द्वारा बाबा ऐसा करा देता है मक्खन से बाल की तरह। हमने तो बहुत बार यूज किया है, आप भी यूज करके देखो, आज भी यूज करना, मानो नींद ना आ रही हो, है ना, बस लेटे हैं बाबा आओ आओ नींद को ऑर्डर करो, बस हमें अपने आगोश में ले ले बाबा। ट्राई करो, कोई भी समस्या हो उसको आप खूब इस्तेमाल करो, आपको तो ब्रह्मास्त्र मिला हुआ है, बड़े से बड़ा चीज हर समस्या में ये काम आता है, उस समस्या में उसे यूज करो और फिर देखो आप किस प्रकार से धीरे धीरे बाबा, बस प्रोवाइडेड ऊपर दिल से ही नहीं, एक दो बार याद करके नहीं, अंदर से बस आवाज आनी चाहिए बाबा मेरे साथ ही आओ, बाबा मुझे इससे उबारो, कभी व्यर्थ संकल्प चल रहे हो बाबा आओ इससे मुझे सहनशीलता की या समाने की शक्ति मुझे दो, विस्तार को समाने की शक्ति दो बाबा। और यही आज भी बाबा ने कहा कि जितना विस्तार है उसको सार में समाता है, तो अभी ये अभ्यास में ये चीज हमारी बहुत बहुत बड़ी सहयोगी है। एक ये भी करो और साथ साथ क्या बाबा का जैसे देखा ना, बाबा अक्सर करके क्या होता है कि जो समस्या आती है व्यर्थ संकल्प वगैरह चलते हैं वो कई बार संबंधों के कारण चलते हैं, अपने ऊपर तो हम लोग धीरे धीरे विजय प्राप्त वो कर लें, लेकिन दूसरों को हम कई बार वो कर देते हैं तो दोषी दे देते बना देते हैं, होता हमारा ही है क्योंकि दूसरा वो कर्म कर रहा है लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है उसके आधार पर सारा कुछ होता है। एक व्यक्ति ने एक बात कही करी कुछ भी, और दो व्यक्ति हैं चार व्यक्ति हैं, चारों के अपने अपने रिएक्शन है, एक स्ट्रेस में आ जाएगा, एक उसको उड़ा देगा, एक थोड़ा काफी समय ले लेगा, आदि आदि, हमारा रिएक्शन कैसा है उस पर हर चीज निर्भर करती है। इस बात को कई बार हम लोग अपनी कॉन्फ्रेंस वगैरह में ना एक शब्द के रूप में बोलते हैं, शायद सुना होगा आपने कि प्रॉब्लम जिंदगी भर, बड़ा सिंपल सी बात है, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, क्या जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। धूल चेहरे, समस्या हमारे साथ है, हमारा रिएक्शन नेगेटिव है, लेकिन हम दूसरे को ना दोषी बनाते रहे कि ये इसके वजह से ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसने ये करा। लेकिन उसके लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है, बाबा ने हमारी भारतीय संस्कृति ने भी एक दिया कि संबंधों में भी, क्योंकि हमारा संसार यही हो गया, वो उसके लिए कहा है कि जियो और जीने दो। अक्सर करके हम दूसरे को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, सास बहू को, बाप बेटा को, भाई भाई को, सीनियर जूनियर को, आदि आदि, और जब अनुरूप नहीं चलता है तो हमारे मन में संकल्प होते हैं, व्यर्थ बातें होती हैं। हर एक का अपना अपना स्वभाव है, संस्कार है, हाँ सावधानी देना हमारा कर्तव्य है, वो सब करें, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, अपेक्षा रखना कि ये पूरा मेरे अनुरूप चलेगा, ये अपने को ही प्रॉब्लम इनवाइट करना है। इसीलिए बाबा कहता है दो शब्दों से सदा बचो, एक है अपेक्षा और दूसरी है उपेक्षा। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा फुलफिल नहीं होती है तो हमें कष्ट होता है, और अगर हम दूसरों की उपेक्षा कर देते हैं अपने कुछ कॉम्प्लेक्स के कारण, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण, या मैं बड़ा हूं ये छोटा है आदि आदि, दूसरे की उपेक्षा हो जाती है तो दूसरे को कष्ट होता है। इसलिए इस अपेक्षा और उपेक्षा इन दोनों से सदा बच रहो। तो इस रीति से एक एक चीज में देखते चलें कि मन हमारा क्या है, और मन में जैसे बताया प्रकृति, तो बाबा का देखा, बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को रात को, शाम को, मतलब बहुत लेट नाइट नहीं, और बाबा का शरीर 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात बाबा का शरीर रखा रहा, और 21 को दोपहर के बाद 2 बजे के बाद बाबा का संस्कार किया गया। तो समझो इतना लगभग 65 घंटे शरीर रखा रहा, लेकिन क्या विशेषता थी शरीर की, हम तो यहीं पर ही थे, कोई यहाँ पर पुराने भाई बहन वगैरह धीरे धीरे आते जा रहे थे, लेकिन पहले से नहीं थे, न बाबा को कोई इंजेक्शन लगाया गया, न बाबा को कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता हुआ था, कोई काला नहीं पड़ा, कोई दुर्गंध नहीं आई, और ये शरीर यूजुअली आत्मा जाने के बाद अकड़ जाता है ना, स्टिफ हो जाता है, तो बाबा का शरीर काफी हद तक जैसे फ्लेक्सिबल था एकदम, जैसे बस। ये किस चीज का प्रतीक है? प्रकृति जीत का प्रतीक। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, आत्मा इतनी पावन, मन इतना जीता हुआ था बाबा ने कि ये प्रकृति जीत अपने आप हो गया, इसने पूरा साथ दिया। हमने बहुतों से पूछा, कई डॉक्टरों से, कई जो से, कि ऐसा हो सकता है क्या? कहते नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन हमने तो खुद ही लास्ट डे स्नान कराया, और यहाँ पर हम सब भाई लोग जो पुराने भाई लोग थे, और शांति स्तंभ जहाँ है वहाँ पर बाबा का संस्कार किया गया, यहाँ पर लाए, देखा, काफी हद तक बाबा के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे ही चमकता हुआ, कोई दुर्गंध नहीं। तो ये प्रकृति जीत, तो प्रकृति जीत हम सबको भी बनना है, बाबा ने कहा है ना। तो एक तो प्रकृति के रोज हम योगदान करें, और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन मैं जस्ट हिंट दूंगा कि एक तो प्रकृति को रोज योगदान करें, जल को, अग्नि को, वायु और सूर्य जो है अग्नि का प्रतीक है, और आकाश, ये तत्व महातत्व, आप सब भी बस सतयुग में पावन थे, हम पावन हो रहे हैं, आओ हम दोनों हाथ मिला करके इस सृष्टि को और पावन करें। हमारे सबसे निकट के साथी तो आप ही हो, शरीर ही हमारा निकट का साथी है, आदि से लेकर अंत तक, भले अलग अलग नाम रूप में होता है, लेकिन बना तो इन्हीं 5 तत्वों का है। तो यहाँ पर इन तत्वों से हमारा वार्तालाप हो, उनसे हमारा ऐसा हो, उनको हम अपना मित्र बना लें। मित्र हमारी सदा मदद करता है समय पर। तो मानो जल है, हा? बहुत आजकल जल का प्रकोप हो रहा है, बाढ़ आ रही है, कहीं सुनामी होती है, कहीं ये, तो हमारा जल के कारण मृत्यु न हो, या कष्ट न हो, या क्योंकि अंत समय मानो सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, बहते जा रहे हैं, उस समय का एक बाबा की याद रहेगी क्या? नहीं होगी, कष्ट होगा बहुत ऐसा, लेकिन वो स्थिति ही हमारे सामने ना आए, उसके लिए बाबा ने बताया है, जितना आप वॉइसलेस होंगे, ये तो वायरलेस है, मोबाइल फोन ये सब तो कोई काम नहीं करेगा। हम लोगों को पढ़ाया गया था इंजीनियरिंग में कि ऐसा सृष्टि में समय आता है, कहीं अर्थ में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म, रिवर्स जब हो जाते हैं प्रकृति के किन्हीं कारणों के कारण, नॉर्थ साउथ बन जाता है, साउथ नॉर्थ, तो सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएंगे, जो बाबा ने कहा है, अंत में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं रहेगा, तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाएंगे, तब यही वॉइसलेस कम्युनिकेशन काम आएगा, और हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। मन में भी नहीं होगा, लेकिन सेफ्टी जहां होगी, जहां रास्ता होगा, जहां बचने का पूरा साधन होगा, वहीं पैर बढ़ के हमें ले जाएंगे। तो इसीलिए इन तत्वों, वो कब होगा, जब तत्वों को हमने अपना निकट का साथी बनाया होगा। तो मानो जल है तत्व, जल में क्या सबसे बड़ा गुण है, शीतलता, ये तो है ही है, साथ साथ जल में सबसे बड़ा गुण एडजस्टमेंट का है। फ्लेक्स, देखो अभी इस गिलास में जल लिया, गिलास में सेट हो गया, कटोरी में लोगे कटोरी में हो जाएगा, थाली में कर दो थाली में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में हो जाएगा, हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही हम भी, हमारे संस्कार ऐसे हों, हर व्यक्ति के साथ हम एडजस्ट होके चल सके, तो क्या होगा, हर एक के साथ अगर एडजस्ट होके चलने का संस्कार होगा, तो जैसे हमने जल का संस्कार धारण कर लिया, और जल हमारे दुख का, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, इसीलिए फिर हमारे जो अंत होगा बहुत सुखद अंत होगा, जिसे इच्छा मृत्यु बोलते हैं। भीष्म पितामह को भी यही वरदान था ना, ब्रह्मा बाबा को भी देखने से बिल्कुल ये लगा, बाबा जा रहे हैं, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, इच्छा, बाबा को मालूम था अब मैं जा रहा हूँ, बच्चों से अंतिम बार मिल रहा हूँ, खुशी खुशी वो चले गए। ऐसे ही हम लोग भी अंत में खुशी खुशी, वो तभी होगा जब मन जीते जगत जीत होगा, मन के साथ प्रकृति जीते जगत प्रकृति जीत हो जाएगा, और बस इच्छा से प्रकृति और मन, इन दोनों में इतना एडजस्टमेंट हो जाएगा कि मन की बात प्रकृति और प्रकृति की बात मन एकदम सीधा मानेगा। अभी तो मन कुछ एक बोलता है प्रकृति मानती नहीं, मन कहता है कभी क्रोध ना करो, गुस्सा आ जाता है प्रकृति, बिल्कुल दोनों कई बार विपरीत चलते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होगा कि अंत समय में दोनों में इतना तालमेल बैठा हुआ होगा, बस हम कहेंगे हम जा रहे हैं, हाँ अच्छा, और प्रकृति भी साथ देगी। तो जल का ये एडजस्टमेंट का गुण अगर धारण किया होगा, तो कभी भी जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। ऐसे ही वायु का सबसे बड़ा गुण क्या है, हल्कापन। हर एक में गुण तो बहुत है, 10-10 गुण है कम से कम, लेकिन मैं एक गुण टच कर रहा हूँ, ऐसे ही वायु का गुण है हल्कापन। ऐसे ही हमारे अंदर भी इतना हल्कापन हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए, परीक्षा आ जाए, हम जीवन में भारी ना, कई बार भारी हो जाते हैं, किसी से बोलने का दिल नहीं करता, ये अलग एकांत में रहो, नहीं, वायु की तरह अगर हम हल्के होंगे ना, तो क्या होगा, वायु का जितना भी तांडव नृत्य होगा, वायु 300-400 किलोमीटर की रफ्तार से भी बहेगी, साइक्लोन आएंगे, जैसे अल नीनो वगैरह कोई है, कोई लैला आया था, कैटरीना साइक्लोन, बहुत भयंकर प्रकृति की हलचल होगी, लेकिन अगर हम में हल्के रहने का संस्कार होगा, और वायु भी हल्की है, तो वो मित्र मित्र को कभी भी परेशान नहीं करता, सहयोग देता है, और ऑटोमेटिकली हमारे मन को वही टच होगा जहां सेफ्टी होगी, और वहां चले जाएंगे। ये वायु का गुण है। और आकाश का क्या गुण है सबसे बड़ा, विशालता। और आकाश की इस विशालता के कारण ही वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और वो सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी विशालता का ऐसा गुण हो, हमारा हर आत्मा के साथ वार्तालाप हो, बोलचाल हो। कई बार क्या होता है, कोई जिससे हमारे संबंध उतने मधुर नहीं होते हैं, सामने से भी आ रहा है तो हम नजर बचा के निकल जाते हैं, बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन, बोलचाल नहीं होती है, और जिनके साथ बहुत मधुर होते हैं उनके साथ घंटों तक भी बात करते हैं। नहीं, विश्व महाराजन का ये लक्षण है, हम सब विश्व महाराजन बनने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। विश्व महाराजन का ये लक्षण है, विश्व की एक एक आत्मा से उसका मधुर संबंध होगा। कैसे होगा, अब हर जगह तो विश्व की 600 करोड़ आत्माओं तक तो पहुंच नहीं सकते, इसीलिए बाबा ने ये साधन दिया, अमृत वेले ग्लोब को एमर्ज करो, विश्व को एमर्ज करो, हर आत्मा को योगदान करो। तो जिनको नहीं देखा उनसे संबंध बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको रोज देखते हैं, बातचीत करते हैं, जिनके संबंध में आते हैं, उनसे या तो मधुर संबंध हो जाते हैं या थोड़ी कटुता आ जाती है, और कटुता के कारण कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। बस यही हमें संपूर्णता के मार्ग में बहुत बड़ा बाधक होगा, क्योंकि आकाश मार्ग से आने वाले, आकाश को अगर मित्र नहीं बनाया होगा तो आकाश मार्ग से आने वाले जो मिसाइल होंगे, रॉकेट होंगे, कोई बम होगा, वर्षा पानी ऊपर से, क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट उत्तराखंड में क्या हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ, तीन तीन तत्वों ने एक साथ तहलका मचाया, क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर जल का हुआ, फिर लैंडस्लाइड हुआ, पृथ्वी हिली, हजारों लोग मर गए कुछ मिनटों में। ऐसे ये पांचों तत्वों का तांडव नृत्य तो होने ही वाला है, लेकिन इन तत्वों को हम मित्र बना के रखें। बस तत्व तो दूर से ही देखें, तत्वों को भी तो देवता कहते हैं, दूर से ही देखें, हाँ ये मित्र है, बस ऑटोमेटिकली वो टच होगा, इस साइड में चले जाएंगे जहां तत्वों का नृत्य नहीं होगा तांडव, और इधर पूरे सब जगह होगा, हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। इस तरह जल के तरह बहुत गुण है, शीतलता है, सदा आगे बढ़ता रहता है, रुकता नहीं, आदि आदि वो सब आप सोचना, लेकिन वायु की तरह हल्का। ऐसे ही सूर्य का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, हैं? सूर्य अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या है, हाँ अग्नि में कोई चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया, आप ज्वालामुखी योग वो आप बच्चों का हो। ज्वालामुखी योग माने ज्वालामुखी कितना बड़ा टेम्परेचर होता है, तेजी से निकलता है, और ज्वाला की तरह हम लोग देखते थे बाबा जब योग कराते थे ना, तो बस बाबा की दृष्टि काफी जल्दी जल्दी घूमती थी, ऐसा बाबा के नैनों में हम कुछ सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाए, इतना तेज होता था, बाबा की दृष्टि ली और बस कई बार आंखें झुक जाते थे, इतना तेज दृष्टि। इसीलिए बाबा योग कराते कराते हर जगह ना बस थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड योग कराते हुए दृष्टि घुमाते रहते थे। ऐसा हमारा भी ज्वालामुखी योग का अभ्यास हमारा होता रहे कि उसमें कोई भी आए उसका रूप परिवर्तन हो जाए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। कब होगा ये, जब हमारा ज्वालामुखी रूप होगा, यानी सूर्य का ये गुण हमने धारण किया हुआ होगा, और सूर्य की तरफ जब मुख होता है तो क्या होता है, सूर्य में देखो, सूर्य उगता है सारी दुनिया में प्राण आ जाते हैं, पूरी दुनिया का संचालन हो जाता है, सूर्य छुपा रात हुई सब सोने चले जाते हैं। तो इस तरह ये ऐसा सूर्य हो हमारा, हरेक में जागृति ले आए, जो आत्मा आए उसमें जागृति आ जाए और बस मुझे ऐसा बनना है। सूर्य का सबसे बड़ा ये गुण, अग्नि स्वरूप हमारा होगा तो उसका रूप बदल जाएगा, दुखी आत्मा सुखी हो जाएगी, अशांत आत्मा थोड़े से देर में जरा से, और तब हमारे द्वारा ही बाबा ना भक्तों को साक्षात्कार कराएगा। चार आत्मा चार भक्त आए, एक हनुमान का भक्त है, एक राम का, एक कृष्ण का, एक देवी का, मानो हम तो एक ही हैं, कैसे साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार की चाबी तो बाबा के पास है। तो बस जो जिस इच्छा से आएगा उसको अपनी इच्छा के अनुरूप बाबा साक्षात्कार कराएगा, और वो तृप्त होकर आत्मा जाएगी, हाँ वाह भगवान के दर्शन हो गए। हाँ ब्रह्मा बाबा का था ना, ब्रह्मा बाबा थी तो कृष्ण की आत्मा, सबको उनसे कृष्ण नारायण सुरक का साक्षात्कार होता था, लेकिन शुरू की बात है, एक सरदार जी भी आते थे, सुना होगा जीवन कहानी में, उनका परिवार आता था, सरदार जी खुद नहीं आते थे ज्ञान में, तो सरदार जी को अच्छा नहीं लगता था, उसने सोचा मैं बाबा को मार दूंगा। एक दिन छुरी लेके आया, बहन से कहा मुझे बाबा से मिलना है, गया, बहन ने बाबा के पास बैठा दिया, बहन भी चली गई काम में, और जब देखा उसने बाबा अकेले हैं, उसने छुरी निकाली और बाबा की तरफ मारने को बढ़ा, तो क्या हुआ, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार। अब बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने उनके द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया, क्योंकि उसकी भावना गुरु नानक देव में थी, इसीलिए। और बस देखा गुरु नानक, ओ गुरु जी मैं क्या करने, आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, माफी मांगने लगा, बाबा के पैरों में गिर गया, छुरा बाबा के पैर के पास रख दिया, मैं तो बहुत बड़ा पाप करने चला था गुरु जी, मुझे माफ कर दो, क्या होगा मेरा, और बस ये करके माफी मांग के वो चला गया। ये सारे पार्ट बाबा के हम बच्चों में भी अंत समय एक एक बच्चा, इसीलिए तो बाबा ने कहा है ना, हम ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी, तो ब्रह्मा के कदम में कदम होगा तो ब्रह्माचारी। और पृथ्वी का तो बता ही दिया, तो ये पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दाता का, हमारे सम्मुख भी कोई आए बिना लिए हुए न जाए, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सत्कार, ऐसा हो कि वो आत्मा को बस ये लगे ये ही मेरे दाता है, इन्होंने ही मेरी सर्व इच्छाओं को पूर्ण करना है, समझे। तो थोड़ा यस जी, नहीं नहीं, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सत्कार, ये चीजें प्रदर्शित होती हैं। और पांच तत्व जो है ना, उनसे तो वैसा ही वार्तालाप करना है जो जिस तत्व के अंदर जैसा गुण है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप वार्तालाप करें जल से, नक्की लेक के पास चले जाएं, जल को देख रहे हैं, हे जल देवता, जल आप कितना जल राशि है, मैं आत्मा भी प्रकृति पांच तत्वों से बना हुआ हूँ, जल से, आइए हम और आप मिल करके हम एक नई सृष्टि की रचना करें, आप में जो गुण है मैं धारण करने का प्रयास करता हूँ, आपके समान शीतलता, आपके समान सदा आगे बढ़ने का गुण, जल आगे बढ़ता जाता है, कोई बड़ा पत्थर भी आ जाएगा तो भी रास्ता बना के निकल जाएगा, और जल आपके अंदर ये सारे गुण हैं, जो जो उन गुणों को स्मृति मिले, बस शुभ भावना, शुभ कामना, मैं भी प्रकृति को प्रकृति के समान, ऐसा प्रकृति, बाबा ने कहा प्रकृति भी आपकी रचना है, तो इस तरीके से प्रकृति के भी हम रचयिता बन करके चले हैं, क्योंकि ये शरीर प्रकृति का है ना, शरीर पे ही हमारा कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे कहने से ही तो हाथ उठता है, हमारे कहने से ही तो आंख होती है, तो ये प्रकृति का ऐसा, जब ये सैंपल मान रहा है तो बाहर की प्रकृति भी हमारी सब बातों को माननी चाहिए। बारिश हो रही है और हमने कहा नहीं, ये जल देवता आपको इसमें सहयोग देना है, अभी आपको इधर नहीं आना है, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम है, हमने तो कई बार प्रयोग करा है और ऑलमोस्ट हर बार बाबा ने सफलता दिलाई है, इसके बहुत उदाहरण है विदेशों में भी, यहाँ भी, किस प्रकार से जब एक एक तत्व, तो योग के प्रयोग भी करते जाएंगे तो भी साथ में बनते जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब 5-7 मिनट हम सब योग करते हैं, और इसके इन्हीं बस हम इस स्थिति में योग करें जैसे मैं मन का मालिक हूँ, और मैं मन का मालिक होकर के बस माया जीत और प्रकृति जीत, आत्मा होती चली जा रही। ओम शांति, ओम शांति।
योग करें उससे पहले मैं भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, ऐसा लगता है हमारे सब भाई बहन डूब गए पुरानी यादों में, पुरानी बातों में, और भाई साहब ने जो सुनाया इस तरीके से सुनाया, मुझे तो लग रहा था जैसे ये सब बातें अभी की घटित, इतनी पुरानी बातें नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे थोड़े समय पहले की बातें, पूरा वृतांत से सुनाया, गहराई से सुनाया, आप खुद भी खोए हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि सबको भी अपने साथ साथ डुबोते चले जा रहे हैं उन बातों में, और अंदर की महसूसता चेहरों से ये दिखाई पड़ती है, सबके मन में आ रहा है हम भी ऐसे जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी उसी गहराई से चलेंगे बाबा की याद में।